नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को आज से 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वैशाली प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। और बेगूसराय में आयोजित रणधीर वर्मा अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में समस्तीपुर ने वैभव सूर्यवंशी के तिहरे शतक की बदौलत सहरसा को पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया था। इस समारोह में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़ तथा पंकज चौधरी भी हिस्सा लेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है।
साथियों, 2024 का यह चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने, कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो 25 करोड़ से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा और मध्यम वर्ग देश की प्रगति को गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी कारण बड़े भ्रष्ट लोग सलाखों के पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को जमुई से बिहार में चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला बिहार दौरा होगा। जमुई से एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती चुनावी मैदान में हैं। इधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया है कि चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो के साथ ही कई जगह रैलियों को भी संबोधित करेंगे। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव होना है। इन चारों लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इधर विपक्षी गठबंधन INDIA ने भी दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली की। यह रैली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के लिए की गई। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को धमकाने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सभी पार्टियों को समान अवसर उपलब्ध नहीं है। श्री खड़गे ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है और विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए।
चाहे हमारे कुछ भी मतभेद हो, लेकिन यहाँ एक होकर एक मंच पे हम आते हैं। हम देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए एक मंच पे है। ये इंडिया गठबंधन जो बना, देश के रक्षा के लिए, लोगों के रक्षा के लिए और आपके हिफाजत के लिए बना, या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं।
इस रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता तथा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। पिछले वर्ष जून में पटना में गठबंधन की घोषणा के बाद INDI गठबंधन के नेताओं की यह पहली सार्वजनिक बैठक थी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं बल्कि परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की नई प्रोत्साहन योजना आज से लागू होगी। यह योजना जुलाई माह तक जारी रहेगी। इसके तहत प्रति दोपहिया ई वाहन की खरीद पर 10,000 रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना का उद्देश्य लगभग 3 लाख से अधिक दोपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। वहीं छोटे तिपहिया वाहनों, ई रिक्शा और ई कार्ड की खरीद पर 25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बड़े तिपहिया वाहन के मामले में 50,000 रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में आज से बिजली उपभोक्ताओं को नई दर पर 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। विद्युत विनियामक आयोग की ओर से दिए गए निर्णय के बाद राज्य सरकार ने सब्सिडी जारी रखी है। नई बिजली दर लागू होने से कुटीर ज्योति वाले को 1.97 रूपये प्रति यूनिट, ग्रामीण घरेलू को 2.45 रूपये, शहरी घरेलू को 100 यूनिट तक 4.12 रूपये प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक खपत पर 5.52 रूपये प्रति यूनिट लगेगी। फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पटना हवाई अड्डा प्रशासन ने 44 जोड़ी विमानों की समय सारणी जारी की है। यह सारणी 26 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत पटना से अयोध्या के लिए अब प्रतिदिन विमान सेवा उपलब्ध रहेगी। पटना हवाई अड्डा प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब पटना से दिल्ली के लिए प्रतिदिन 14, बेंगलुरु के लिए 6, मुंबई के लिए 5 और कोलकाता के लिए 3 विमान उपलब्ध होंगे। इधर गोवा की सीधी उड़ान सेवा बंद कर दी गई है। वहीं पहली बार आकाशा एयरलाइंस ने पटना से अपनी सेवा की शुरुआत की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वैशाली प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होने की संभावना है। इसके प्रभाव से कई स्थानों पर गर्म हवा चल सकती है।
आज के सांख्यिकी विश्लेषण के अनुसार अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन हवा के रुख में बदलाव होगा। हवा उत्तर पश्चिम दिशा से चलेगी, जिस कारण बस सुबह के समय मौसम हल्की ठंडक रहेगी और दिन में गर्म हो जाएगा, क्योंकि शुष्क उत्तर पश्चिमी हवा के चलते आसमान साफ रहेगा, धूप का कड़ा प्रकोप दिखाई देगा। इसके चलते अधिकतम तापमान लगातार क्रमशः वृद्धि होगा।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए तिथि जारी की है। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी भी एक विषय के प्राप्तांक से खुश नहीं है तो उनके लिए स्क्रूटनी का अवसर दिया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए 3 से 9 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर मैट्रिक विशेष परीक्षा और मैट्रिक कम्पार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 3 से 9 अप्रैल तक भरे जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET में आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दी है। अब छात्र 5 अप्रैल को रात 9:50 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया के लिए छात्रों को 3 चरणों का पालन करना होगा। पहले चरण के तहत छात्रों को CUET के पोर्टल पर नामांकन करना होगा और निर्धारित फीस भरनी होगी। नामांकन के बाद छात्र पोर्टल पर मौजूद विश्वविद्यालयों में अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। पटना से जारी दुनिया के पहले कॉपर डाक टिकट के विमोचन के 250 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पटना जीपीओ में आयोजित विशेष आवरण विमोचन समारोह में राज्य के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि अजीमाबाद पटना में 250 वर्ष पहले यह डाक टिकट जारी किया गया था। समारोह में सेवानिवृत्त जस्टिस राकेश कुमार, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ रास बिहारी सिंह, पद्मश्री विमल कुमार, प्रख्यात शिक्षाविद खान सर समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। बेगूसराय में आयोजित रणधीर वर्मा अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मुकाबले में समस्तीपुर ने सहरसा को 281 रनों से पराजित कर दिया। इस मैच में समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने 48 चौके और 15 छक्कों की मदद से 332 रन की शानदार पारी खेली। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहला 13 शतक है। समस्तीपुर की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 500 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में सहरसा की पूरी टीम 219 रन के स्कोर पर सिमट गई। इधर बेगूसराय में खेली जा रही 52वीं सीनियर मेंस राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में तमिलनाडु की टीम ने कर्नाटक को 29-17 से हरा दिया। किशनगंज जिले में एसएसबी के जवानों ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से अमेरिकी ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। जमुई में उत्पाद विभाग ने शिक्षा विभाग के एमडीएम कार्यालय में शराब के नशे में दो कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत महद्दीपुर पंचायत के खरोवा गांव में पुलिस ने हवाई फायरिंग के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर के ईस्ट कॉलोनी में पिछले दिनों हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, महारैलियों से चुनावी महासंग्राम का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आज अखबार ने भी इंडी गठबंधन के चुनाव प्रचार की खबरों को प्रमुख खबर बनाया है। अखबार लिखता है, विपक्ष ने भरी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार। प्रभात खबर ने लिखा है, कांग्रेस ने किशनगंज से मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाया। दैनिक जागरण लिखता है, पप्पू की आवक और राजद के साथ गठबंधन से क्षुब्ध अनिल शर्मा ने छोड़ी कांग्रेस। दैनिक भास्कर ने मैट्रिक के नतीजों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूर्णिया के शिवंकर टॉपर, मैट्रिक रिजल्ट में 82.91% पास। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, राष्ट्रपति ने लालकृष्ण आडवाणी को प्रदान किया भारत रत्न। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को आज से 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वैशाली प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। और बेगूसराय में आयोजित रणधीर वर्मा अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में समस्तीपुर ने वैभव सूर्यवंशी के 13 शतक की बदौलत सहरसा को पराजित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।